ओम शांति। आज है 5/10/88 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। प्रभात माना क्या? अमृत वेला। कौन कौन समझते हैं कि हमारा अमृत वेला सवेरे जो पुरुषार्थ चलता है उससे हम संतुष्ट हैं? जो समझते हैं कि हमारा अमृत वेला संतोषजनक चल रहा है वो जरा हाथ उठाए। हाथ उठाइए। ना के बराबर। इतने बड़े संगठन में 2-5% आत्माएं दिखाई पड़ रही हैं जो हाथ उठा रही है। हाथ उठाने के बावजूद उनको पता ही नहीं है कि पुरुषार्थ में संतोष का मतलब क्या है। अमृत वेले का पुरुषार्थ है, उसके बारे में बाबा ने बोला है कि अमृत वेला सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। अमृत वेले से जो फाउंडेशन पड़ जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, वो सारा दिन दिल और दिमाग को तरोताजा रखता है। अमृत वेला ठीक कर लिया माना मनसा सेवा स्वतः ही सेट हो गई। कर्मणा सेवा, वाचा सेवा उतनी पावर नहीं रखती है जितनी प्रातः का क्लास अथवा प्रातः के जो पुरुषार्थ में प्रभात या अमृत वेला कहा गया है उसमें वाइब्रेशन को एकाग्र कर लिया तो जो संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि सारा दिन काम करती है। तो आज की वाणी में हेडिंग ही इस बात का दिया हुआ है। जरूर वही हेडिंग दिया होगा जो कमी चल रही है। दुनिया वालों को सुनाते हैं कि विनाश का लास्ट टाइम आ गया, अब पुरुषार्थ का अंतिम चरण चल रहा है, और खुद क्या कर रहे हैं? अमृत बेला अलबेला चल रहा है। तो बोला मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। अमृत वेले में बाप को याद करने के साथ साथ सारे भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा कैसे होगी? वाचा से करेंगे या कर्मणा से करेंगे? क्योंकि प्रभात काल में तो अकेले बैठना होता है, वाचा से तो सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं। किसको सुनाएंगे? स्थूल रूप में तो कोई सामने होता नहीं, तो वाचा सेवा की बात नहीं है। अमृत वेले उठकर कोई काम भी नहीं होता है, कर्मणा की भी बात नहीं है, कौन सी सेवा की बात है? मनसा सेवा की बात। लेकिन मनसा सेवा भी वो ही कर सकेंगे जिन्होंने अमृत वेले का लंबे समय से पुरुषार्थ करते हुए अपना अभ्यास पक्का कर लिया है। जिनका अभ्यास पक्का नहीं है और जिनको दुनिया से वैराग्य नहीं आया है वो अमृत वेले में अलबेलेपन की नींद में झुटके खाते रहेंगे। पहले तो उठते ही नहीं है और उठते हैं तो नींद आ जाती है, व्यर्थ के संकल्प आ जाते हैं, माया के कंटाले आ जाते हैं और हार करके अमृत वेला छोड़ देते हैं। तो मनसा सेवा की बात नहीं हो पाती। मनसा सेवा बड़ी सहज भी है और मन को एकाग्र करना बहुत कठिन भी है। जिन्होंने पुरुषार्थ के आदिकाल से ही जब से बेसिक नॉलेज का पहला दिन शुरू किया उसी दिन से फाउंडेशन पक्का डाल लिया, मैं आत्मा स्टार हूँ, अपनी भ्रकुटी में स्टार को देखने की प्रैक्टिस पक्की कर ली, उनके लिए अमृत वेला कठिन नहीं है। अमृत वेला उठते ही उठते सबसे पहला संकल्प आना चाहिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार हूँ। ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल बाप का बच्चा हूँ, मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट धारी विशेष आत्मा हूँ। अगर हीरो पार्ट धारी नहीं हूँ तो कम से कम जो हीरो पार्ट धारी हैं उन विशेष आत्माओं के विशेष संसर्ग संपर्क में आने वाली विशेष आत्मा, ऐसा अभ्यास जिनका पक्का है, आत्मिक स्टेज का फाउंडेशन पक्का है, वो अभी भी अगर चाहे थोड़ा समय बचा हुआ है तो अमृत वेले को सफल कर सकती है और दैवी राजस्थान बनाने में जो देववर्ण की आत्माएं जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली हैं, उन राजाओं के बीच में अपना स्थान ले सकते हैं। अंदर से समझते भी है कि हम अमृत वेले का वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ जिसके लिए बाबा ने सबसे ज्यादा दबाव दिया है, सबसे जास्ती महत्व बताया है, उसमें हम कितने पास हो रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं। अभी बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, आर्डिनेंस निकाल रहे हैं, अमृत वेले मन बुद्धि से मुझे याद करो और दैवी राजस्थान भारत को बनाने के लिए सेवा करो। रिकॉर्ड चला है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है, बाप जो समझाते हैं वो उस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि दुनिया के लोग जो हैं, उन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं लिया हुआ है और तुमने 7 दिन का वो कोर्स लिया हुआ है। 7 दिन के बेसिक नॉलेज की जिन्होंने भट्टी कर ली उनकी समझ में ये मुरली की बातें आ सकती हैं। बेसिक रूप में तो आएंगी ही, लेकिन अगर एडवांस के रूप में भी उनको समझाया जाए तो भी बुद्धि में आ जाएगा। इसलिए बोला, बाप जो कुछ तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को माने कौन से बच्चों को, जिन्होंने अपन को आत्मा समझ लिया, अपन को आत्मिक स्टेज में देखने के आदि हो गए और दूसरों को भी देखते हैं तो आत्मिक स्टेज में देखने के आदि बन गए, उन बच्चों के सिवाय बाकी किसी को बाप की बातें समझ में नहीं आवेगी। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर के बैठे तो कुछ भी नहीं समझ सकेगा। यहाँ भी जरा हाथ उठाओ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया है। हाथ उठाना, अच्छा ठीक है, तो जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया है, बेसिक नॉलेज का कोर्स ही नहीं उठाया है, उनको पहला काम ये करना चाहिए कि 7 दिन का कोर्स उठाएं। तो बुद्धि में बाबा की समझाई हुई सारी बातें बुद्धि में आवेंगी। नया बन करके बाबा की सभा में बैठ करके वाइब्रेशन जैसे होने चाहिए वैसे नहीं फैला सकेंगे। ऐसे कोई सत्संग में नहीं होता है जो यहाँ होता है। यहाँ क्या होता है, जो भी आकर के बैठे वो नया आकर के ना बैठे, कम से कम 7 दिन पूरी बात को समझ करके सब आकर के बैठे। ऐसा यही एक ईश्वरीय सत्संग है जिसमें ये नियम बना हुआ है। ऐसा और कोई सत्संग में नहीं होता जहां मनुष्य जाए और कुछ भी न समझे। यहाँ ये सत्संग ऐसा ही है। यहाँ अगर कोई नया आकर के बैठेगा कि चले महात्मा जी का दर्शन कर आए, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आवेगा, उनका टाइम वेस्ट होता रहेगा। उन सत्संगों आदि में तो है ही शास्त्रों आदि सुनाने की बातें, यहाँ कोई शास्त्र नहीं सुनाए जाते। ये बड़े से बड़ी कॉलेज है, क्यों बड़ी से बड़ी कॉलेज है, उन कॉलेजेस में तो डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, मैकेनिक बनाए जाते हैं, उनको तो 1,000, 2,000, 10,000, 25,000, 1,25,000, 1,50,000 रुपया पगार मिल जाएगा। इससे जाती तो कुछ भी, विदेशों में जाकर के सेवा करेंगे तो 1,50,000 मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि विदेशों में जाकर के वो राजा बन करके बैठ जाएंगे या भारतवर्ष में उनको कंट्रोलिंग पावर हाथ में दे दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये कॉलेज ऐसी है, ईश्वरीय कॉलेज कहो, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी कहो, इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो अगर ये पढ़ाई पूरी करते हैं तो उनके लिए ये गारंटी है कि वो राजाएं तो क्या, राजाओं के राजा सम्राट भी बन सकते हैं, विश्व के मालिक बन सकते हैं। यही एक ईश्वरीय कॉलेज है जिसमें जन्म जन्मांतर के राजाएं तैयार किए जाते हैं। इसलिए यहाँ की नॉलेज का नाम ही है राजयोग की नॉलेज, वो भी सहज राजयोग है। कठिन उनके लिए हो जाता है जो यहाँ के नियमों को फॉलो नहीं करते, ऐसे ही चलना चाहते हैं, दिंगा मुस्ती करना चाहते हैं। जैसे कि उन कॉलेजेस में भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरे नियमों को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए ये पढ़ाई कठिन हो जाती है। ये सहज राजयोग भी उनके लिए कठिन योग हो जाता है। इसलिए बोला कि इसमें बड़ी से बड़ी प्राप्ति है इस पढ़ाई में। ये राजा बनने की पढ़ाई और किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, उन सत्संगों में गीता का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, व्याख्या करके सुनाएंगे, ये भी बताएंगे कि नर अर्जुन ऐसा पुरुषार्थ करता है जो नर से नारायण बना, नारी द्रौपदी ऐसा पुरुषार्थ करती है जो गीता ज्ञान सुन करके नारी से नारायणी बनी। उन नारायण और नारायणी का राज्य सत्युग के आदि में होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन वो पढ़ाई कब पढ़ाई गई और किसने पढ़ाई, किस तरीके से पढ़ाई, जो साधारण नर से बढ़कर के विश्व का मालिक नारायण बन जाए, यह बात वो शास्त्रकार नहीं बता सकते। ये कॉलेज ऐसी है जिसमें इन सब बातों का डिटेल बताया जाता है, इसलिए बताया कि ये बड़ी से बड़ी कॉलेज है और यहाँ कोई नई बात नहीं है। शास्त्रों में भी जो बात बताई जाती है नर से नारायण बनाने की पढ़ाई भगवान ने पढ़ाई, नारी से लक्ष्मी बनाने की पढ़ाई भगवान ने पढ़ाई, वही बात यहाँ भी बताई जाती है। वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता और यहाँ प्रैक्टिकल होता है। इसलिए बोला कि फिर से वह दिन आया आज, 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने आकर के ये राजाओं का राजा महाराजा बनाने की पढ़ाई थी और अभी फिर वही परमात्मा इस शक्ति पर आया हुआ है और राजाओं का राजा बनाने की जो राजयोग की पढ़ाई है वो पढ़ाई रहा है। ये वही दिन आया हुआ है जबकि बाप बैठे बच्चों को राजयोग सिखलाए रहे हैं। इस समय भारत में राजा ही तो नहीं है, जब सारे भारत में से राजा ही चट हो जाती है, सारे भारत में तो क्या, सारी दुनिया से राजा ही चट हो जाती है, राजाओं का राज्य खत्म हो जाता है। किसका राज्य हो जाता है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। उस समय बाप आकर के राजाई की स्थापना करते हैं। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो, अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं और जो निर्विकारी राजाएं थे सतयुग और त्रेता में, जिसे रामकृष्ण का राज्य कहा जाता है, उसमें भी जन्म जन्मांतर हम राजाएं बनते रहे, राजघराने में जन्म लेते रहे। बुद्धि जानती है अभी हम इस भारत को दैवी राजस्थान बनाए रहे, अभी ये भारत दैवी राजस्थान नहीं कहा जा सकता, आसुरी राज्य का स्थान हो गया है। सारे भारत में राम राज्य नहीं कहा जा सकता, अगर राम राज्य होता तो गांधी जी को ये प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ती, पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ राम राज्य की स्थापना करो। इससे साबित होता है कि अभी रावण का राज्य है। कितनी बड़ी बुद्धि तुमको मिलती है जो तुम रावण राज्य को पलट करके राम राज्य बनाए रहे हो। बड़े बड़े धर्म पिताएं सृष्टि पर आए, बड़े बड़े महात्माएं सृष्टि पर आए, राम राज्य का बखान करते रहे, प्रशंसा करते रहे, लेकिन दुनिया में रावण राज्य बढ़ता गया। सारे भारत में तो क्या, सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, जो बेकायदे राज्य है वो रावण का राज्य सारी दुनिया में फैल चुका। ये क्षुद्र बुद्धि के आधार पर होता है। परमात्मा बाप की विशाल बुद्धि के आधार पर, श्रेष्ठ मत के आधार पर ये कार्य नहीं होता। अभी तुमको विशाल बुद्धि मिली हुई है, जो कोई भी कर्म करते हैं वो कर्म बुद्धि में रहता तो है ना, तो तुम वारियर्स हो। कैसे वारियर्स हो? जो गीता में वो पढ़ करके सुनाते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, जो कौरव और पांडव इकट्ठे हुए युद्ध के लिए, उन वारियर्स ने क्या किया? वो सिर्फ सुनाते हैं। और तुम वो धर्म युद्ध करके, कर्म युद्ध करके, कर्म क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में कर्म का और धर्म का संघर्ष करके सद्धर्म की स्थापना करते हो, दैवी राजस्थान स्थापन करते हो, तो तुम ऐसे वारियर तो हो। जानते हो हम आत्मा या बाप के साथ योग करने से, योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हो। सारी दुनिया पवित्र नहीं बनेगी, सारे ही धर्मखंड पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो इस सत्य रूपी रंगमंच पर रह भी नहीं सकेंगे। एटम बमों के धमाकों के साथ समुद्र के अंतराल में समाये जावेंगे, और भारत में तुम दैवी राजस्थान स्थापन करेंगे। तुम चक्र के आदि मध्य और अंत की नॉलेज को धारण कर तुम चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, इसमें सिर्फ यह बात विशेष है कि हम कैसे मनन चिंतन मंथन करके अपनी आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को जान लें। ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम युद्ध के मैदान में हैं। कैसे युद्ध के मैदान में? हमारा मार्शल कौन है जो मार्शल से आदेश मिल रहे हैं, श्रीमत मिल रही है, उस श्रीमत के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं? कदम कदम पर श्रीमत लेते हुए अगर हम जीवन में चलते रहे, इस धर्म क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र में चलते रहे, तो हम जरूर पांडव बनकर के विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सर्टेन है, बरोबर। अब हम इस भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बनाए रहे हैं। डबल सिरताज कौन कौन सा ताज? एक तो स्थूल ताजधारी राजाएं होते हैं और दूसरे पवित्रता का ताज धारण करने वाले राजाएं। वो पवित्रता का ताज देवताओं को दिखाया जाता है, जो सर के चारों ओर दिखाया जाता है। लाइट ही लाइट दिखाते हैं, लाइट वो इस समय की यादगार है। जो आत्माएं जितना जास्ती पवित्र रहती हैं, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करती हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाती हैं, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, उन आत्माओं के आसपास वो लाइट का वाइब्रेशन बनता जाता है। जब लास्ट स्टेज होगी, रिजल्ट आने की स्टेज होगी, उस समय वो स्वयं भी अनुभव करेंगे और उनके संसर्ग संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं इस बात का अनुभव करेंगी। जैसे पारसनाथ कहा जाता है, जो उनके संसर्ग संपर्क में आवेगा, उनके ऊपर उस पवित्रता का प्रभाव जरूर पड़ेगा। सुख और शांति के वाइब्रेशन को अनुभव करेंगे। यह है दूसरा पवित्रता का ताज। उनके मनन चिंतन मंथन की गति बहुत तीव्र हो जाएगी। अपने अनेक जन्मों की चोरी को वो जान जाएंगे। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते। जिन चित्रों में डबल ताजधारी देवताओं का चित्र दिखाया गया है, हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं। कौन से चित्र में दिखाया गया? सीढ़ी के चित्र में, झाड़ के चित्र में, वो ताजधारी ब्राह्मण देवताएं बैठे हुए हैं। देवताओं की बात नहीं है, वास्तव में मनन चिंतन मंथन करने वाले उन पवित्र बुद्धि ब्राह्मण बच्चों की ये बातें हैं, जिनकी बुद्धि में अभी बैठा हुआ है कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस बाप के घर में जा रहे हैं, फिर आकर के राज्य भाग करेंगे नई सती की सृष्टि में। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी क्या कर? मनुष्य गुरुओं की मत पर नहीं, किसकी मत पर? एक परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर। अभी तो मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते। मुसलमानों के नाम के आगे भी श्री शब्द रख देंगे, श्री बसरमल, श्री फलाने मल, अरे जहाँ नाम के साथ मल माना गंध लगी हुई है वहाँ श्रेष्ठता कहाँ से आ गई? तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है जिस बाबा की ही माला बनती है, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, वो टाइटल तो उन मनुष्य गुरुओं ने अपने ऊपर रखवा लिए, वो माला रूपी संगठन कभी नहीं बना सके और न बना सकेंगे। ये तो परमात्मा बाप का ही काम है जो इस नारकीय शक्ति में आकर के ऐसा श्रेष्ठ संगठन रूपी माला तैयार करते हैं जिसकी यादगार हजारों वर्षों तक हर धर्म के अंदर माला के रूप में स्मरण की जाती है, सिमरण की जाती है। तो ये सारी रचना किसकी है? मनुष्य गुरुओं की है या एक परमपिता परमात्मा की है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना, इस सारी मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर कौन हुआ, रचयिता कौन हुआ? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो भी वंश हैं, ये सारी माला रुद्र शिव बाबा की है। माला का जब नाम लिया तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का नाम लिया गया। इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, इनका नाम क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि ये सब अब मनुष्य गुरुओं के चलाए हुए धर्म हैं। मनुष्य गुरु वैश्यालय बनाने वाले हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना परमात्मा बाप आकर स्वयं करते हैं। जो गीता में लिखा हुआ है कि मैंने जब यह ज्ञान दिया तो सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को यह ज्ञान दिया। तो सूर्य ने अकेले धारण किया होगा या नंबरवार और भी सूर्यवंशी बच्चे होंगे? और भी नंबरवार सूर्यवंशी बच्चे रहे होंगे जिन्होंने ये ज्ञान को धारण किया। 4.5 लाख जन्म देने वाले माता पिता होंगे नई शक्ति में, उनमें से 2.25 लाख असल सूर्यवंशी घराने के होंगे, रुद्रमाला जिनको कहा जाता है, और 2.25 लाख विजयमाला से आने वाली चंद्रवंशी आत्माएं होंगी जिन्होंने ज्ञान चंद्रमा से विशेष पालना ली है। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य का जो डायरेक्ट पार्ट है उससे डायरेक्ट लंबे समय तक पालना नहीं ली, ये अभी कार्य चल रहा है। ज्ञान सूर्य साकार में इस शक्ति पर कार्य कर रहा है, ज्ञान चंद्रमा भी साकार में इस शक्ति पर कार्य कर रहा है। ये सूर्य और चंद्र की जोड़ी शाश्वत जोड़ी है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। ये सूर्य देव और चंद्र देव शाश्वत पाठधारी षष्ठी रूपी रंगमंच के हैं जिनका नाम शास्त्रों में रामकृष्ण के रूप में उजागर किया गया है। राम की आत्मा ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली है, हीरो पाठधारी है, और कृष्ण की आत्मा ज्ञान चंद्रमा का पाठ बजाने वाली है। तो ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। राजस्थान तुम बच्चे बनाए रहे हो श्रीमत पर, तुम जानते हो शिव बाबा जो माला बनाए रहे हैं, यह सारी माला के मन के रूपी रचना ये किसकी रची हुई है? ये माला के मन के रचने वाला कौन? क्रिएट करने वाला तो एक ही बाप है, वो है सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की माला। 550 करोड़ मनुष्यों की माला भी है। कैसे? वो 550 करोड़ जो मनुष्य हैं, वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थहीन होकर के रहने वाली आत्माएं भी उसमें मिक्स हैं। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते हैं, वो सजाएं खा करके वापस जाने वाली आत्माओं की माला है। इसलिए वो भी रुद्रमाला में ऐड किए जाते, क्योंकि अंत में सजाएं खा करके भी हर मनुष्य आत्मा अपन को ज्योति बिंदु आत्मा, स्टार आत्मा समझने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन जो जितनी सजाएं खाते हैं, उनका जन्म जन्मांतर का सुख का पार्ट उतना ही कम हो जाता है। अंत में सब अपने रचयिता को जान जाते हैं। इस सारी सृष्टि में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं रहती जो उसे क्रिएटर बाप को न पहचाने। जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता है, जिसको दूसरे दूसरे धर्मों में भी मान्यता है, जानकारी है, क्रिश्चियंस में उसे एडम कहते हैं, मुसलमानों में उसको आदम कहते हैं, किसको? जो सृष्टि रूपी रंगमंच का क्रिएटर है। जैनियों में उसको आदिनाथ कहते हैं और हिंदुओं में उसको आदिदेव कहा जाता है, आदिदेव शंकर, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, ऐसे कह के श्लोक बनाए हुए हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि के सब मनुष्य, 550 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी अपने रचयिता बाप को जान जाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को पूरा पूरा नहीं जानते, क्योंकि लास्ट में सजाएं खा करके मानते हैं। पहले से संदेश लेकर उस पढ़ाई को नहीं पढ़ते, इंटरेस्टेड नहीं होते। इसलिए बाप के पूरे ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, इस बात की गहराई को नहीं जान पाते। ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आती है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उन बातों से महरूम रह जाती हैं। वो तो समझते हैं कि कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। भक्ति मार्ग वाले ऐसे ही समझ रहे हैं, जानते हैं कि एटमिक एनर्जी तैयार हो चुकी है। जो एटम बम बने हैं वो कोई घरों की सजावट करने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते कि अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। वो समझते हैं अभी कलयुग शास्त्रों में लिखा हुआ है, हजारों वर्ष चलेगा, तो हजारों वर्ष ये सृष्टि चलती रहेगी। अभी तुम जानते हो हम अभी दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बन रहे हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, पहले दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। देवताओं का राज्य सतयुग में और त्रेता में क्षत्रियों का राज्य होता है। देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं और क्षत्रियों की 2 कलाएं कम हो जाती है, 14 कला संपन्न गाये हुए हैं। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुम बच्चों को तो चक्रवर्ती राजा रानी बनना ही है। किससे बात की, किससे बात कर रहे हैं? तुम बच्चे कौन बच्चे हैं? प्रजा वर्ग में आने वाले हैं या राजा रानी बनने वाले हैं? राजा रानी बनने वाले बच्चों से बात कर रहे हैं। जिनका लक्ष्य प्रजा बनने का है उनसे बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, प्रजा योग सिखाते ही नहीं है। तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता हैं क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य कुल, फिर शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं द्वापर और कलयुग में। जो पूज्य देवताएं सतयुग त्रेता में थे वही द्वापर और कलयुग में आकर पुजारी बन जाते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए, ऐसे नहीं डबल ताजधारी जो देवताएं हैं उनका ही चित्र हम बना करके रखें। नहीं, टैली करने के लिए डबल ताजधारी देवताओं के भी चित्र बनाने हैं और द्वापर कलियों के जो सिंगल ताजधारी मनुष्य हैं, मनुष्य राजाएं, उनके भी चित्र बनाना चाहिए। ये एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। कैसी एग्जीबिशन? जिसमें डबल ताजधारियों के भी चित्र हों और सिंगल ताजधारियों के भी चित्र हों। ये जड़ चित्र ही बनावेंगे या चैतन्य चित्रों की भी प्रदर्शनी लगावेंगे? सिर्फ जड़ चित्रों की प्रदर्शनी लगाने से कुछ भी नहीं होगा। जड़ चित्रों का प्रदर्शन करने के बाद बेसिक नॉलेज में अंत में चैतन्य चित्रों की भी प्रदर्शनी ब्राह्मणों की दुनिया में होगी। जो चैतन्य देवी देवताएं बनने वाले हैं डबल ताजधारी, वो भी अब छुपे नहीं रहेंगे। जो मनन चिंतन मंथन करने वाली पवित्र आत्माएं हैं वो भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगी और सारी दुनिया में भी प्रत्यक्ष होंगी। और उनके साथ साथ जो सिंगल ताजधारी हैं, जिनको पवित्रता का ताज नहीं होता है, भक्त राजाएं बन जाते हैं, वो भी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी प्रत्यक्ष होंगे। तभी ये वंडरफुल एग्जीबिशन हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ ये एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि एग्जीबिशन सिर्फ जड़ चित्रों की ही है, चैतन्य चित्रों की नहीं बनेगी। चैतन्य चित्रों की भी एग्जीबिशन बनेगी। तुम तो बच्चों की बुद्धि में ये बैठाए देते हो कि दोनों एग्जीबिशन जरूरी है। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वो चित्रों द्वारा समझाया जाता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिर्फ सुनने सुनाने की चीज नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव करने की चीज है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। किन की बुद्धि में चढ़ेगा है? जिनका मनन चिंतन मंथन चल रहा होगा, जो ज्ञान की लाइट अपने चारों तरफ अनुभव कर रहे होंगे, उस ज्ञान की लाइट में सदैव रहने का अनुभव कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि हम डबल ताजधारी देवता बनने वाले हैं। और जो सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन पवित्र बुद्धि न होने के कारण उनका मनन चिंतन मंथन रूपी जो प्रकाश है वो नहीं फैलता। तो उनकी बुद्धि में ये बात आ जाएगी कि हम सिंगल ताजधारी द्वापर और कलयुग नरक की दुनिया के राजा बनने वाले, रानी बनने वाले हैं। हम सतयुग त्रेता के वो श्रेष्ठ देवताएं नहीं बन सकेंगे। ये प्रैक्टिकल में अनुभव हो रहा है और होता जाएगा। तो बच्चों की बुद्धि में अभी बैठना है। जो मेरे बच्चे हैं राजा रानी बनने वाले, उनकी तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। ये समझाया है, सत्युग में आत्मा का ज्ञान है। इस सत्य रूपी रंगमंच का आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता। ये आत्मा का ज्ञान भी सत्युग में जब बूढ़े होते हैं, सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि ये पुराना शरीर छोड़ दें और दूसरा नया शरीर ले लेवे। आज में नहीं पता चलेगा, जन्म होते ही और जवानी की अवस्था में पता नहीं चलेगा। जब शरीर छोड़ने वाले होंगे तब अचानक उनकी बुद्धि में आवेगा अब ये शरीर छूटने वाला है। ये ख्याल आप पिछाड़ी के टाइम स्वतः ही उनकी बुद्धि में आ जाते हैं। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। ब्राह्मणों की बुद्धि में भी ये बात अनुभव होगी, लेकिन किन की बुद्धि में अनुभव होगी? जिनका देह अभिमान रूपी चोला छूटना होगा, वो अनायास ही चोला छोड़ेंगे और खुशी के कार्य में स्थित हो जाएंगे। फिर नया शरीर मिलना शुरू होगा, माना कंचन काया बनना शुरू होगी, दुष्ट संकल्प आना बंद हो जाएंगे। जो भी संकल्प आवेंगे वो श्रेष्ठ संकल्प आवेंगे, उनके संकल्पों की दुनिया ही स्वर्ण में हो जाएगी। ये ख्याल पिछाड़ी के टाइम आते हैं, पहले पहले ये ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है ये परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानती। जब तक बाप आकर खुद अपना परिचय न देवे, क्या ब्रह्मा के रूप में परमात्मा शिव ने आकर के दादा लेखराज के चोले के द्वारा जो बाप का परिचय दिया, वो तथाकथित तो उस समय के ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में एक्यूरेट समझ में आया? नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि उस समय माँ का पाठ चल रहा था। ब्रह्मा के द्वारा किसका पाठ बजाया गया? माँ का पाठ चला। परमात्मा माँ के रूप में आकर के ज्ञान दे रहा था, बाप के रूप में ज्ञान नहीं दे रहा था। बाप बाद में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो ये परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई की बुद्धि में नहीं है, कोई भी नहीं जानते। कब तक नहीं जानते? जब तक बाप खुद आकर के बाप के रूप में सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर प्रत्यक्ष न हो जाए, सबके सामने एक साथ प्रत्यक्ष नहीं होगा। नंबरवार बच्चों के सामने एक साथ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, नंबरवार ही आगे पीछे प्रत्यक्ष होगा। पहले ब्राह्मण बच्चे ही नंबरवार पहचानेंगे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। सीधा साधा बाप का परिचय नहीं है, परिचय लेते भी हैं, समझते भी हैं, निश्चय पत्र भी लिख करके देते हैं, और फिर बाद में अनिश्चय आ जाता है, भूल जाते हैं। तो ये बाप का परिचय भी बहुत गंभीर बात है। उनका रूप तो पहले लिंग ही रखना पड़ता है। बेसिक नॉलेज में क्या समझाया गया शुरुआत में, पहले लाल लाइट का गोला लिंग ही समझते थे, बाद में मम्मा ने इस बात की इजाद की कि आत्मा जैसे ज्योति बिंदु है, परमात्मा बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए। परमात्मा बाप का भी असली रूप ज्योति बिंदु है। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी बाप जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो बच्चे तब ही समझ पाते हैं जब वो निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, साकार में स्टेज, साकार में होते हुए भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी वो स्वरूप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। उस अव्यक्त स्टेज के द्वारा ही बाप पहचाना जाता है। इसलिए बताया कि उनका लिंग रूप ही पहले बच्चों के समझ में आता है। द्वापर युग से जब पूजा होती है तो पहले पहले चित्र और मूर्तियों की पूजा होती है या पहले लिंग की पूजा होती है? पहले किसकी पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है। तो जरूर संगम युग में जब ज्ञान मार्ग में ब्राह्मण आत्माएं चली होंगी तो उन ब्राह्मणों ने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस लिंग रूप को ही पहले पहचाना होगा। कैसा लिंग रूप? क्या स्थूल में कोई लिंग होता है? लिंग का मतलब है जिसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान न हो, माना निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई पड़ती हो। कान होते हुए भी जैसे दुनिया की ग्लानी, सुनते हुए भी नहीं सुनना, आंख होते हुए भी आंखों से देखते हुए भी जैसे बच्चों के दुष्कर्म, बच्चों का झूठ, फरेब आंखों से देखते हुए भी न देखना और दुनिया का भी नहीं देखना, उसको कहते हैं आंखों से देखते हुए भी न देखना, जैसे आंखें हैं ही नहीं। कानों से ग्लानी सुनते हुए भी न सुनना, जैसे कान है ही नहीं। इसी तरह और इंद्रियां भी होते हुए भी जैसे न होने का काम करती है। ऐसी स्टेज को निराकारी स्टेज कहा जाता है। तो पहला रूप वो है जो लिंग रूप में प्रत्यक्ष होता है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं। वो भक्ति मार्ग की बात बताई, यहाँ ज्ञान मार्ग में भी जब यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ संपूर्ण स्टेज को पहुंचेगा तो जो निराकारी बाप के निराकारी स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं वो भी निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होंगे। जिनकी पूजा भक्ति मार्ग में होती आई है निराकारी रूप में, बाप ने पहले ये नहीं बताया कि आत्मा और परमात्मा बिंदु रूप है। सन 36 से जब ये नाली शुरू हुई तो उस समय ये ज्ञान नहीं था। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा अंगुष्ठाकार है, ऐसे ही समझाया जाता था। भक्ति मार्ग की जो संस्कृत की गीता है उसके ही अर्थ करके समझाए जाते थे और परमात्मा का रूप लिंग रूप बताया जाता था, लाल लाइट का गोला बताया जाता था, जैसा ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ। ये तो बाद में ज्ञान निकला कि आत्मा भी बिंदी और परमात्मा बाप भी बिंदी। अगर शुरू से कहते कि आत्मा बिंदी है तो तुम बच्चे समझ ही नहीं पाते। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में ये बिंदु रूप प्रैक्टिकल स्टेज समझने की बात है, जिनकी वो आत्मिक स्टेज पक्की हो जाती है वो अपन को और अपने बाप को जल्दी पहचान सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस अनुभव करने की बातें हैं। जो बात जब समझानी होती है तब ही समझाते हैं। कोई कहे पहले से ये ज्ञान क्यों नहीं दे दिया, इसका जवाब क्या आएगा? छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले से ही गंभीर बातें सुनाई जाती हैं क्या? वो रहीमदास के कवित्व, सूरदास के कवित्व, तुलसीदास के रचनाएं, उनका गहरा अर्थ क्या प्राइमरी स्कूल में सुनाया जाता है क्या? जब बच्चे परिपक्व स्टेज के हो जाते हैं तब उनको गहरी बातें सुनाई जाती हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, जो आज समझाते हो वो पहले ही बता देते। नहीं, ड्रामा में नूद ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है। कोई कहे ये एग्जीबिशन पहले क्यों नहीं निकली, अथवा ये चैतन्य चित्रों की एग्जीबिशन बाद में क्यों निकलेगी, अभी क्यों नहीं निकलती, ये जड़ चित्रों की एग्जीबिशन हो या चैतन्य चित्रों की एग्जीबिशन हो वो पहले ही हो जाती। ये जड़ रथ की यात्रा या चैतन्य रथ की यात्रा पहले ही क्यों नहीं शुरू हो गई? सारे भारत में रथ यात्रा निकाली जा रही है, जड़ रथ की भी यात्रा हो रही है तो चैतन्य रथ की भी यात्रा हो रही है, ये पहले ही क्यों नहीं हुआ? ये नहीं कहा जा सकता। ड्रामा में जब जैसी नूद होती है तब वैसी बातें प्रत्यक्ष होती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर देखो बड़े बड़े कारखानों में एक मिनट में एक मोटर तैयार हो जाती है, कितनी साइंस निकाली है। ऐसे ही लास्ट में रुद्रमाला के वो मणके जिनको शालिग्राम के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होना है, वो बिंटो मोटर की तरह सारे संसार में प्रत्यक्ष होते रहेंगे। तुम जानते हो ये भारत कितना बड़ा है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर ये दुनिया कितनी छोटी हो जाएगी, कितनी छोटी हो जाएगी। जैसे 500 साल पहले अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नहीं थी, ऐसे जब एटम बमों के बड़े बड़े धमाके होंगे तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका फिर नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर उसका नाम निशान नहीं था, अभी फिर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगी। ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये पहले 2500